0.15 पर एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र AI की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी जिंदगी की कहानी में गहरे उतर रहे हैं जो किसी फिल्म से भी ज्यादा नाटकीय और अविश्वसनीय लगती है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की।
हाँ, उनकी आत्मकथा टोटल रिकॉल, माई अनबिलीवेबली ट्रू लाइफ स्टोरी।
जी,
ये नाम सुनते ही ना जाने कितनी छवियां आंखों के सामने घूम जाती हैं।
हाँ, जैसे मिस्टर ओलंपिया का वो विशाल शरीर
और टर्मिनेटर का वो पत्थर जैसा चेहरा।
बिल्कुल, और फिर कैलिफोर्निया के गवर्नर का पद भी।
सही में, ऑस्ट्रिया का एक छोटा सा गांव और वहां से निकलकर पूरी दुनिया पर छा जाना।
ये कहानी सिर्फ एक सफलता की लिस्ट नहीं है, इसमें मतलब बहुत कुछ है।
वही तो, ये इच्छा शक्ति की कहानी है, खुद को बार बार एक नए सांचे में ढालने की कहानी है।
बिल्कुल सही कहा आपने, आर्नल्ड की कहानी ये दिखाती है कि कैसे एकदम साफ लक्ष्य, मतलब एक विजन।
हाँ, विजन।
और उस विजन को पाने के लिए जो जबरदस्त मेहनत लगती है, जिसे वो रेप्स एंड सेट्स कहते थे।
अच्छा, रेप्स एंड सेट्स।
हाँ, वो किसी इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकती है, उनकी पूरी यात्रा, वो महत्वाकांक्षा, वो अनुशासन
और वो अमेरिकन ड्रीम वाली बात भी।
जी हाँ, और इसके सिद्धांत आज भी मतलब किसी भी फील्ड में काम करने वालों के लिए बड़े काम के हैं।
तो चलिए फिर इस कमाल की जिंदगी के सफर को करीब से देखते हैं, समझते हैं उन पड़ावों को जिन्होंने आर्नल्ड को वो बनाया जो वो बने,
और उन सबकों को भी ढूंढते हैं जो हम सब उनकी कहानी से सीख सकते हैं।
थ्री जीरोस।
तो शुरुआत उनके बचपन से करते हैं, युद्ध के बाद का ऑस्ट्रिया, वो छोटा सा गाँव। कैसा था वो शुरुआती माहौल?
देखिये, माहौल काफी कह सकते हैं सख्त था, अनुशासन पर बहुत जोर था।
अच्छा।
लेकिन भावनात्मक रूप से थोड़ा ठंडा। उनके पिता गुस्ताव पुलिस चीफ थे।
हाँ, सुना है।
और उनका झुकाव आर्नल्ड के बड़े भाई की तरफ ज्यादा था, आर्नल्ड के प्रति वो थोड़े ज्यादा सख्त थे। तो शायद इसी माहौल ने मतलब आर्नल्ड के अंदर एक जबरदस्त भूख पैदा की खुद को साबित करने की, वहां से निकलने की।
एक आग सी जल गई अंदर।
बिल्कुल, कुछ बड़ा कर दिखाने की चाहत।
और इसी दौरान उन्हें बॉडी बिल्डिंग का रास्ता मिला। ये थोड़ा अजीब नहीं था उस वक्त, उस जगह?
हाँ, था तो अजीब। उन्हें कुछ पुरानी मैगजीन्स मिली जिनमें रेग पार्क जैसे बॉडी बिल्डरों की तस्वीरें थीं।
अच्छा।
बस वहीं से कह सकते हैं एक चिंगारी सी लगी, और उनके लिए ये सिर्फ वर्जिश नहीं थी।
तो क्या था?
ये अमेरिका जाने का टिकट था, एक बेहतर जिंदगी का सपना, एक बिल्कुल साफ लक्ष्य।
कमाल है, इतनी कम उम्र में इतनी स्पष्टता।
जी हाँ, यहीं से उनका वो विजन वाला सिद्धांत शुरू होता है। लक्ष्य इतना पक्का था कि एक किस्सा है।
बताइए ना।
जब वो ऑस्ट्रिया की आर्मी में थे अनिवार्य सेवा के दौरान, तो एक जूनियर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लिए बिना बताए कैंप से भाग गए थे।
सच में?
हाँ, और जीत कर ही लौटे, सजा भी मिली बाद में, पर लक्ष्य ज्यादा जरूरी था उनके लिए।
मानना पड़ेगा, फिर वो अमेरिका आ गए और मिस्टर ओलंपिया बनने तक का सफर आसान तो नहीं रहा होगा।
बिल्कुल नहीं, 1968 में अमेरिका आए, जो वीडर थे ना बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में बड़े मशहूर, उनकी मदद से।
हाँ हाँ।
शुरू में तो भाषा की दिक्कत, कल्चर का फर्क, काफी मुश्किलें थी, लेकिन गोल्ड्स जिम कैलिफोर्निया में उनका जो जुनून था वो देखने लायक था।
कैसा जुनून?
वो इसे सिर्फ वजन उठाना नहीं मानते थे, उनके लिए ये एक साइंस था, एक आर्ट था, हर मांसपेशी, हर डाइट, हर चीज का हिसाब,
बाकायदा पढ़ाई की तरह।
बिल्कुल, सर्जी ओलिविया जैसे तगड़े प्रतिद्वंदी थे, कड़ी टक्कर मिली, लेकिन वो लगातार 7 बार मिस्टर ओलंपिया बने, ये उनके अनुशासन और लगन का सबूत है।
7 बार?
जबरदस्त।
और फिर आई वो डॉक्यूमेंट्री पंपिंग आयरन, कहते हैं उसने तो सब कुछ बदल दिया।
हाँ, पंपिंग आयरन एक गेम चेंजर थी, और आर्नल्ड ने मतलब बड़ी होशियारी से उस फिल्म का इस्तेमाल किया।
कैसे?
अपनी एक इमेज बनाने के लिए, करिश्माई, इंटेलिजेंट, मजाकिया। उन्होंने दिखाया कि बॉडी बिल्डर सिर्फ मसल्स वाले लोग नहीं होते।
अच्छा।
इस फिल्म ने बॉडी बिल्डिंग को एक अजीब से शौक से निकालकर फिटनेस की मेनस्ट्रीम मिला दिया। ये उनकी मार्केटिंग स्किल का पहला बड़ा प्रदर्शन था।
और ये भी सुना है कि शोहरत के साथ साथ वो चुपचाप बिजनेस भी कर रहे थे, ये बात कम लोग जानते हैं।
सही कहा आपने, ये उनकी दूर की सोच दिखाता है। देखिए, बॉडी बिल्डिंग से पैसा बहुत ज्यादा नहीं आता था उस वक्त।
हाँ, ये तो है।
तो उन्होंने शुरू से ही साइड में कुछ ना कुछ शुरू कर दिया था, जैसे मेल ऑर्डर से ट्रेनिंग बुकलेट बेचना।
अच्छा।
अपने दोस्त फ्रैंक को कोलंबो के साथ मिलकर छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का काम करना, और सबसे जरूरी, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना।
और इसी पैसे ने, इसी आर्थिक आजादी ने उन्हें बाद में अपनी शर्तों पर फिल्में चुनने की ताकत दी।
ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब एक्टिंग में आने से पहले ही वो सेट थे, और फिर हॉलीवुड, जहाँ शुरू में लोगों ने कहा कि अरे इनका शरीर बहुत बड़ा है, बोलने का अंदाज अजीब है, नाम तो कोई ले नहीं सकता।
हाँ, यही तो कमाल है, उन्होंने इन्हीं बातों को अपनी USP बना लिया। हाँ। अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल दिया।
कैसे?
कोनिन द बारबेरियन से एंट्री हुई, लेकिन असली गेम चेंजर थी 1984 की द टर्मिनेटर।
हाँ, जेम्स कैमरून की फिल्म।
बिल्कुल, उनका वो थोड़ा रोबोटिक अंदाज, सपाट आवाज, वो उस किरदार के लिए परफेक्ट था।
आई विल बी बैक,
वही वो डायलॉग तो अमर हो गया। उन्होंने साबित कर दिया कि हीरो का मतलब सिर्फ चॉकलेटी चेहरा नहीं होता। उसके बाद तो लाइन लग गई, एक्शन फिल्में तो थी ही, कमांडो, प्रेडेटर, पर उन्होंने कॉमेडी में भी हाथ आजमाया, ट्विंस, किंडरगार्टन कॉप।
हाँ, इससे उनका दायरा बढ़ा, वो सिर्फ एक्शन हीरो नहीं रह गए। और ये भी सुनने में आता है कि वो सेट पर उतने ही डिसिप्लिन्ड थे जितने जिम में।
अच्छा
जी, अपने काम को लेकर बहुत सीरियस, स्टंट्स खुद करते थे, और कॉन्ट्रैक्ट्स में भी उनका कंट्रोल जबरदस्त होता था, जो उस जमाने में आम बात नहीं थी।
कमाल है।
और फिर आता है तीसरा बुरा पड़ाव, राजनीति।
हाँ, गवर्नर बनने तक का सफर।
इसकी शुरुआत शायद मारिया श्राइवर से शादी के बाद हुई, जो केनेडी परिवार से थी।
हाँ हाँ।
इससे उन्हें अमेरिकी राजनीति और पब्लिक सर्विस की दुनिया में एंट्री मिली। फिर राष्ट्रपति जॉर्ज HW Bush ने उन्हें फिटनेस काउंसिल का चेयरमैन बनाया।
ये पब्लिक लाइफ में उनका पहला बड़ा रोल था।
बिल्कुल। और फिर 2003 में वो लम्हा आया जब वो कैलिफोर्निया के गवर्नर चुने गए, गवर्नेटर।
हाँ, वो खास रिकॉल चुनाव था।
जी, उनका चुनाव लड़ना और जीतना दोनों ही थोड़ा अप्रत्याशित था, लेकिन उनकी तैयारी पूरी थी। दो बार गवर्नर रहे।
उन्होंने काम क्या क्या किया गवर्नर रहते हुए?
पर्यावरण पर उनका काफी फोकस रहा, खासकर वो AB 32 Act, जो ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए था।
ये तो महत्वपूर्ण काम था।
हाँ, और राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया। लेकिन हाँ, मुश्किलें भी आईं, बजट की भारी कमी, राजनीतिक मतभेद। तो उनकी विरासत इन तीनों ही क्षेत्रों में है, बॉडी बिल्डिंग, हॉलीवुड और राजनीति, तीनों में शिखर तक पहुंचे।
0730,
तीन बिल्कुल अलग फील्ड्स में टॉप पर पहुंचना।
हाँ।
ये सच में असाधारण है। इसके पीछे का मूल मंत्र क्या था, उनका कोर फिलॉसफी क्या थी?
देखिए, जो एक चीज बार बार उभर कर आती है वो है एकदम साफ विजन की ताकत।
हाँ, विजन।
जैसा हमने बचपन की बात की, उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अपने दिमाग में ये तस्वीर बना ली थी कि उन्हें अमेरिका जाना है, चैंपियन बनना है।
ये सिर्फ सपना नहीं था, मतलब
नहीं, ये एक ब्लूप्रिंट था, एक मानसिक नक्शा जिस पर वो पूरी शिद्दत से चले।
और उनका वो रैप्स इन सेट्स वाला फॉर्मूला जो बॉडी बिल्डिंग से आया।
हाँ, वो उनकी वर्किंग स्टाइल का कह सकते आधार है।
क्या है ये रैप्स इन सेट्स?
रैप्स मतलब दोहराओ, किसी चीज को बार बार करना। सेट्स मतलब उन दोहरावों के समूह। ये सिर्फ जिम तक सीमित नहीं था।
अच्छा।
उन्होंने इसे हर चीज में लागू किया। फिल्म की लाइनें याद करनी है, सैकड़ों बार दोहराओ। गवर्नर के तौर पे कोई पॉलिसी समझनी है, घंटों तक दस्तावेज पढ़ो। उनका मानना था कि किसी भी चीज में परफेक्शन के लिए ये लगातार अनुशासित प्रैक्टिस जरूरी है।
ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक फिजिकल ट्रेनिंग के सिद्धांत को उन्होंने मेंटल कामों पर भी लागू किया, और वो लगातार खुद को बदलते भी रहे।
बिल्कुल, इसे हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक रीइन्वेंशन, मतलब सोच समझकर खुद को नया रूप देना।
जैसे, और अपनी कमजोरियों को ताकत बनाना और खुद को बेचना, इसमें भी वो माहिर थे।
हाँ, ये भी बहुत अहम है। उनका लहजा, उनका शरीर, उनका मुश्किल सा नाम, इन सबको उन्होंने अपना सिग्नेचर बना दिया, अपना ब्रांड।
सही बात है।
वो समझते थे कि सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है, आपको अपने विजन को, खुद को सेल करना भी आना चाहिए। और शायद इन सबके पीछे वो एक आप्रवासी वाला जज्बा भी काम कर रहा था।
मतलब
अमेरिका ने जो अवसर दिए उनके प्रति एक गहरा आभार, और उन अवसरों का पूरा फायदा उठाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करने की एक जिद।
30, 39,
उनकी जिंदगी में इतने सारे मोड़ आए। अगर हमें कोई तीन सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स चुनने हो जिन्होंने उनकी दिशा ही बदल दी, तो वो कौन से होंगे?
पहला तो मेरे ख्याल से बिना किसी शक के बॉडी बिल्डिंग को चुनना और अमेरिका जाने का वो पक्का इरादा।
हाँ, वो शुरुआत।
जी, जैसा हमने कहा, ये सिर्फ करियर नहीं था, ये उनके लिए एक तरह से आजादी का टिकट था,
अपनी मौजूदा परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता।
इसी ने सब कुछ शुरू किया।
बिल्कुल, इसके बिना तो शायद कहानी अलग होती।
दूसरा, क्या वो द टर्मिनेटर थी?
हाँ, मैं भी वही कहूंगी।
खासतौर पर द टर्मिनेटर में वो रोल मिलना,
क्यों इतना खास था वो?
क्योंकि वो सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, वो पल था जब उनकी सारी तथाकथित कमियां थी ना,
हाँ, जिससे आवाज बॉडी
बिल्कुल, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उस फिल्म ने उन्हें ग्लोबल सुपरस्टार बना दिया और ये साबित कर दिया कि वो लीक से हटकर भी कामयाब हो सकते हैं।
सही। और तीसरा टर्निंग पॉइंट, क्या वो गवर्नर बनना था या कुछ और?
देखिए, राजनीति बहुत अहम थी, लेकिन अगर हम पर्सनल लेवल पर सबसे बड़े, सबसे ज्यादा असर डालने वाले मोड़ की बात करें तो वो शायद उनकी बेवफाई और उससे जन्मे बेटे जोसेफ का सच दुनिया के सामने आना था।
ओह हाँ, उन्होंने किताब में इसका जिक्र किया है।
जी, किताब के आखिर में वो इस पर काफी ईमानदारी से लिखते हैं। इस एक घटना ने न सिर्फ उनकी 25 साल की शादी खत्म कर दी, बल्कि उनकी पब्लिक इमेज और शायद उनके खुद के आत्मसम्मान को भी बहुत गहरी चोट पहुंचाई। ये उनकी कहानी में एक बहुत ही मानवीय पहलू जोड़ता है, सफलता के साथ साथ गंभीर व्यक्तिगत भूल और उसकी जवाबदेही का पहलू।
ये वाकई टोटल रिकॉल का एक बहुत ही मार्मिक और ईमानदार हिस्सा है।
30:11 मिनट।
उनकी कहानी इतनी बड़ी है, इतनी अलग है, लेकिन क्या इसमें हम सबके लिए भी कुछ सबक छिपे हैं? कुछ ऐसी बातें जो हम अपनी जिंदगी में उतार सकें?
हाँ बिल्कुल हैं, जरूर हैं। सबसे पहली बात तो ये सीखने को मिलती है कि सीमाएं जो होती है ना, वो अक्सर बाहर नहीं होती, हमारे दिमाग में होती हैं।
अच्छा।
अर्नोल्ड ने बार बार उन लोगों को गलत साबित किया जिन्होंने कहा तुम ये नहीं कर सकते। दूसरों की राय को नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य पर टिके रहने की उनकी ये क्षमता, ये बहुत प्रेरणा देती है।
और वो मेहनत वाली बात, रेप्स एंड सेट्स,
हाँ उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। उनका ये सिद्धांत यूनिवर्सल है, किसी भी स्किल में, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल।
हाँ।
उसमें महारत हासिल करनी है तो लगातार अनुशासन के साथ कोशिश करनी ही होगी। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, वो बस घंटों की मेहनत का नतीजा होती है।
उनका जीवन ये भी तो दिखाता है कि खुद को बदलना, फिर से गढ़ना हमेशा मुमकिन है।
हाँ बिल्कुल, करियर बदलना, एक नई पहचान बनाना, ये सुनने में डरावना लग सकता है।
हाँ लगता तो है,
लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी भी है, और अर्नोल्ड ने तो ये 3-3 बार किया।
सही बात।
और आखिर में एक और जरूरी सबक है, वो है असफलता और अपनी गलतियों का सामना करने की हिम्मत रखना।
हाँ, वो पर्सनल लाइफ वाला पहलू।
जी, कहानी का वो हिस्सा हमें याद दिलाता है कि आप कितने भी कामयाब क्यों ना हो जाएं, कोई भी इंसान गलतियों से ऊपर नहीं है। जरूरी है कि आप अपनी गलतियों को माने, उनकी जिम्मेदारी लें और उनसे सीखें।
ये बात महत्वाकांक्षा और उसकी कीमत पर भी सोचने को मजबूर करती है ना?
बिल्कुल।
01, 1, 2, 30।
तो इस पूरी बातचीत के अंत में अगर हमें 3 मुख्य बातें निकालनी हो श्रोताओं के लिए, तो वो क्या होंगे? अर्नोल्ड की जिंदगी से 3 टेकअवेज।
जरूर, मैं इसे 3 तरह से देखता हूँ। पहला, एक भावनात्मक सबक या इमोशनल इनसाइट। सबसे गहरा भावनात्मक सबक ये मिलता है कि दुनिया में चाहे कितनी भी कामयाबी मिल जाए, नाम, शोहरत, ताकत, सब कुछ हो, लेकिन निजी जिंदगी में की गई गलतियां, खासकर जिनसे आपके अपने लोगों को तकलीफ पहुंचे, जैसे उनकी बेवफाई से उनके परिवार को दुख पहुंचा, वो जिंदगी पर एक बहुत गहरा और शायद कभी ना मिटने वाला निशान छोड़ सकती हैं। ये उनकी कहानी को सिर्फ जीत के जश्न से ज्यादा मानवीय बनाता है। ये जवाबदेही की बात करता है।
ये बहुत गहरी बात है। दूसरा, एक बौद्धिक सबक या इंटेलेक्चुअल इनसाइट। सबसे अहम बौद्धिक सीख ये है कि एकदम साफ लक्ष्य, क्लियर विजन, और उसे पाने के लिए लगातार मेहनत और दोहराव, रेप्स एंड सेट्स का जो सिद्धांत है, वो हर जगह काम करता है।
हाँ, ये बात बार बार आई।
जी,
ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग या फिल्मों के लिए नहीं है, बिजनेस हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, किसी भी फील्ड में अगर आपको असाधारण सफलता पानी है तो ये एक बहुत शक्तिशाली मेंटल और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। लक्ष्य बनाओ और फिर जुट जाओ।
बिल्कुल। तीसरा, एक सार्वभौमिक सबक या यूनिवर्सल इनसाइट। सबसे प्रैक्टिकल सीख जो हम सब अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं वो ये है कि अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना मुमकिन है, और जिंदगी में लगातार सीखते रहना और जरूरत पड़ने पर खुद को एक नया रूप देना यानी रीइन्वेंट करना बहुत जरूरी है।
आप किन हालात में पैदा हुए या लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये आपकी कहानी का अंत नहीं है। आप अपनी कहानी के लेखक खुद हैं और आप उसे बार बार लिख सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं।
30:12।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।